आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 10, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस कहानी के लेखक थे स्वयं प्रकाश जी। और कहानी में हमने पढ़ा था कि कैसे देश के आम नागरिक भी देशभक्ति की भावना रखते हैं और देश के जो महान लोग हैं उनके प्रति सम्मान की भावना उनके मन में हमेशा रहती है। तो कहानी हमने पूरी पढ़ ली थी और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास के लिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 64 पर आ जाइए। ठीक है, तो पेज नंबर 64 पर पहला प्रश्न पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर आपको अपनी कल्पना से लिखना है कि वो सेनानी नहीं था, कैप्टन फिर भी कहा जाता था उस चश्मे वाले को, ऐसा क्यों? तो आप लिखेंगे, जो कैप्टन चश्मे वाला था उसके हृदय में देश के प्रति त्याग और समर्पण की ऐसी भावना थी जो किसी फौजी से कम नहीं थी। उसके अंदर देशभक्ति की भावना, देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति जो सम्मान की भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जो सेनानी थे उनका भी वो सम्मान करता था और इसीलिए नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाकर वो कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा, अपना सम्मान प्रकट करता रहता था। और उसकी इसी भावना को, इसी सम्मान और श्रद्धा को देखते हुए लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्या करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब इसमें आपको 3 प्रश्न है, क, ख, ग। क देखिए, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसमें आप लिखेंगे, हालदार साहब पहले इसीलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वो देखते थे और उसपे हमेशा उन्हें एक अलग तरह का चश्मा लगा हुआ मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो मर चुका था। और हवलदार साहब को लगता था कि जो देश प्रेम की भावना कैप्टन में थी अब शायद वो किसी में नहीं होगी, इस वजह से उन्हें मूर्ति बिना चश्मे के देखनी पड़ेगी। और यही सोच सोच कर हवलदार साहब मायूस हो रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो आप लिखेंगे, जब हवलदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये उम्मीद जाग गई कि अभी भी लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो मरी नहीं है। बच्चों ने वो सरकंडे का चश्मा बना के लगा दिया था तो बच्चों के अंदर ये देश प्रेम का जो जज्बा है, जो भावना है ना, उससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है, हवलदार साहब को ये एहसास हुआ कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वो इस देशभक्ति की भावना को जिंदा रखेगी, हमारे देश का सम्मान करेगी, देश को प्यार करेगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी कि हमारे देश का भविष्य अभी सुरक्षित है। ठीक है, ग देखिए, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बात जितनी छोटी दिख रही थी असल में उतनी छोटी नहीं थी और इसीलिए हालदार साहब उस पे भावुक उठे, क्योंकि कस्बे में घुसने से पहले उनके मन में जो निराशा की भावना थी, जो वो मायूस होने लगे थे, वही जब उन्होंने मूर्ति पे सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा तो उनके मन में एक नई आशा, नई उम्मीद जग गई है ना। और उन्होंने जो दिल ही दिल में जो प्रसन्नता अनुभव की, जो खुशी उन्हें हुई, वही उनकी आंखों से आंसू बनकर बह गई। उन्हें ये विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना कैप्टन के साथ मरी नहीं है बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी कहीं ना कहीं जिंदा है और हमारा देश हमेशा ऐसे ही सबके लिए प्यारा और सम्माननीय बना रहेगा। और इसी आशा को ध्यान में रखते हुए वो भावुक हो गए। प्रश्न 3 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। जो पंक्तियां आपको दी गई हैं, आपको इनका आशय यानी कि इसका अर्थ स्पष्ट करना होगा, ठीक है? तो आप लिखेंगे कि जो हवलदार साहब हैं, उन्होंने जब पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा तो वो हंसने लगा और उसने उसे पागल कहा। तो जो पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया, ये बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी और इसी बात पे वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगे कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि यहाँ की जो कौम है वो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, उन लोगों का मजाक बनाती है जो देश के खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, देश पे सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, अपने अपना घर, अपनी गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, सब कुछ। साथ ही वो जो हमारी कौम है इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, उसके लिए अगर अपनी नैतिकता को त्यागना पड़े तो भी उसे कोई हिचक नहीं होती है ना, यानी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान भी बेच देते हैं। देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है और अपने स्वार्थ को पूरा करने को ही समझदारी समझी जाती है। इसके लिए यानी अब अगर आप बिक रहे हैं, यानी आपका ईमान बिक रहा है, आपके नैतिक मूल्य बिक रहे हैं, तो भी लोग उसे सही समझते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका फायदा हो रहा होता है, यानी अपने स्वार्थ के फायदे के लिए वो अपना ईमान बेचने को तो तैयार होते हैं लेकिन देशभक्ति की भावना रखने वालों का मजाक बनाते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। जो पान वाला था जिससे हवलदार साहब हमेशा पूछा करते थे कैप्टन के बारे में, आपको उसका रेखा चित्र प्रस्तुत करना है, यानी कि वो मतलब कैसा दिखता होगा, है ना, उसका हुलिया वगैरह आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे कि कस्बे के चौराहे पर एक पान की दुकान थी जिसमें पान वाला बैठा हुआ है, वो मोटा और काला है, साथ ही उसके सिर पे अब बस नाम के बाल रह गए हैं, यानी वो लगभग गंजा हो चुका है। जहां वो ग्राहकों के लिए पान बनाता रहता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मुंह में भी हमेशा पान भरे रहता है, यानी खुद भी हमेशा पान खाता रहता है। हमेशा पान खाने के कारण उसके होंठ और दांत लाल हो जाते हैं। अपने कंधे पे वो एक कपड़ा रखता है जिससे बार बार वो अपना चेहरा साफ कर सके, ठीक है? इस तरह से आप पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी जो आपने पढ़ा थोड़ा उस आधार पे और थोड़ा सा अपनी कल्पना के आधार पर। और हो सकता है आपने भी अपने शहर में, अपने गांव में, अपने आसपास कहीं ना कहीं पान वाला कोई ना कोई देखा ही होगा। तो वो पान वाला और ये पान वाले का जो वर्णन है उसमें क्या समानताएं हैं या क्या भिन्नताएं हैं, ये भी आपको देखना होगा कि दोनों में क्या चीजें एक जैसी हैं और क्या चीजें अलग अलग हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो आप पहले बताएंगे, हवलदार साहब ने जब पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा तब पान वाले ने ये टिप्पणी की थी कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है। फिर आप अपने विचार लिखेंगे कि हमारे विचार से पान वाले ने जो टिप्पणी की वो अनुचित थी, ठीक है, अनुचित थी या फिर उचित नहीं थी, क्योंकि कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से अक्षम था, है ना, जिसके लिए वो फौज में नहीं जा सकता था, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में देश के प्रति जो भावना थी, देशभक्ति की, देश प्रेम की, वो किसी भी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन हमेशा अपने कार्यों से देश के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, है ना, अपने सम्मान को प्रकट करता रहता था और उसके इसी समर्पण को देखते हुए पान वाला उसे पागल कहता था। तो ऐसा कहना उस कैप्टन चश्मे वाले की लिए बुरा नहीं है बल्कि पान वाले के लिए बुरा है, क्योंकि ये पान वाले के लिए बुरा क्यों है, क्योंकि इसमें उसकी स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है वो दिखती है, है ना, जो कि अनुचित है, ठीक है? तो ऐसे आप समझाएंगे और फिर आगे लिखेंगे कि जो व्यक्ति पागलपन की तरह, जिस व्यक्ति के सर पर पागलपन की तरह देशभक्ति सवार हो, उसके प्रति तो सबके मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए, बल्कि उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को समझा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 65 पर आ जाइए आप लोग। तो पेज नंबर 65 पे यहाँ दिया है रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसमें हमें पात्रों की कौन सी विशेषता दिख रही है ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इसमें आप लिखेंगे हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना, नेताजी को निहारना, ये उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, है ना, और स्वतंत्रता में जिन लोगों ने भाग लिया था उन महापुरुषों के लिए जो उनके मन में सम्मान था वो प्रकट होता है। क्योंकि नेताजी को जब चश्मा पहनाया जाता था तो कैप्टन की ये देशभक्ति के बारे में सोचकर सुनकर उन्हें बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उनके मन में भी देश के लिए और देश के महापुरुषों के लिए सम्मान की भावना थी। अगला देखिए, ख, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसमें आप लिखेंगे कैप्टन की मृत्यु के बाद जब पान वाला उदास हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए, तो ये बात दिखाती है कि कहीं ना कहीं उस पान वाले के हृदय में भी कैप्टन के प्रति एक आत्मीयता, एक लगाव थी, है ना, आत्मीयता की भावना थी, एक लगाव था उसके मन में, और जो उसकी देशभक्ति थी, भले ही वो उसे पागल कह देता था लेकिन उसके लिए वो उसके प्रति सम्मान भी रखता था। इसी वजह से जब कैप्टन मर गया तो पान वाले को दुख हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस घटना से पान वाले की संवेदनशीलता का पता चलता है और कहीं ना कहीं यह भी पता चलता है कि उसमें भी देश प्रेम की भावना थी। आगे आइए ग पे, तीसरा वाक्य क्या है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो कैप्टन जो बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाता था, ये बात उसकी देश के लिए जिन लोगों ने त्याग किया है उनके प्रति वो सम्मान रखता था ये दिखाते हैं, देश के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम था, भक्ति थी, ये सारी भावनाएं हमें इससे पता चलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो इसमें आपको बताना है कि जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा होगा तब तक उनके मन में एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर होगी जिसका शरीर भारी भरकम होगा, है ना, और उन्हें लगता था कि शायद वो फौज में रहा होगा इसी वजह से लोग उसे कैप्टन कहते हैं, और उसकी एक अच्छी खासी चश्मे की दुकान होगी जिसमें से वो चश्मे निकालकर नेताजी की मूर्ति को पहना देता होगा, लेकिन वास्तव में ये छवि गलत निकली। ठीक है, अब प्रश्न 8 देखिए, कस्बों शहरों महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। अब क, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आपको पहले ये बताना है। तो आप लिखेंगे कि जब किसी महान व्यक्ति की मूर्ति लगाई जाती है तो इसके पीछे उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति की याद, उस व्यक्ति के प्रति सम्मान हमेशा सबके मन में बना रहे, सबको ये याद रहे कि उस महापुरुष ने देश के लिए, समाज के लिए कितने महान कार्य किए हैं, और इसीलिए जो हमारे नागरिक हैं देश के वो उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा काम कर सके। ठीक है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने इलाके के चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, या हम रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, या हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे, आप किसी का भी, जिस भी महापुरुष के बारे में आप चाहें, या भगत सिंह की मूर्ति, किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ गांधी जी का, बाकी आप चाहे तो गांधी जी का नाम लिखिए, चाहे सरदार पटेल जी का नाम लिखिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिखिए, चाहे भगत सिंह जी का नाम लिखिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अगर आप गांधी जी लिखते हैं तो आप लिखेंगे हम अपने इलाके के चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि जो आज का समाज है उसमें हिंसा, झूठ, स्वार्थ, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, ये सारी बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर लोग गांधी जी के आदर्शों को याद करेंगे, उनकी मूर्ति को जब जब देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें याद आएगा कि हमें सत्य, अहिंसा, सदाचार और ऐसी भावनाएं अपने अंदर रखनी चाहिए। तो देश का, समाज का वातावरण अच्छा करने के लिए हम गांधी जी की मूर्ति लगवाना चाहेंगे, ठीक है। आगे देखिए ग, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। यानी अगर कोई मूर्ति आप लगवाते हैं अपने इलाके में, तो उस मूर्ति के प्रति आपके या आपके जो आसपास लोग हैं क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो आप लिखेंगे अगर हम मूर्ति लगवाते हैं तो उसकी गरिमा का, उसके सम्मान का ध्यान रखना भी हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। किसी भी तरह से ना तो हमें मूर्ति का अपमान करना है, ना ही उसे क्षति पहुंचानी है, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना है। उस मूर्ति के प्रति सब श्रद्धा प्रकट करें, सम्मान व्यक्त करें और उसके आदर्शों को माने, यही हमारा उत्तरदायित्व होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो जैसा कि कहानी में दिया गया है ना, कि जो आम नागरिक होते हैं वो भी किसी न किसी तरह से अपने देश के प्रति सम्मान को व्यक्त कर सकते हैं अपनी साधारण गतिविधियों से। जैसे कैप्टन मूर्ति को चश्मा पहना देता था, है ना, तो हम भी लिख सकते हैं कि हमारे जो आसपास कोई अगर मूर्ति है ऐसी महापुरुषों की, तो हम उसका ध्यान रखें, है ना, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और अगर हम किसी सांस्कृतिक धरोहर पे घूमने जाते हैं, जैसे हम ताजमहल देखने गए हैं या और कोई जगह हम देखने गए हैं, तो वहां हमें कुछ लिखना नहीं चाहिए, कुछ उसे खराब नहीं करना चाहिए, कुछ तोड़फोड़ नहीं मचानी चाहिए। बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ऐसी जगहों पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है, ये सोचकर उसका नुकसान भी नहीं करना चाहिए। सफाई रखनी चाहिए, जो सार्वजनिक स्थल होते हैं उन पे सफाई रखनी चाहिए, देश को साफ रखने का जिम्मेदारी हमारी है। स्कूल में आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें। तो ये सारे जो आपके कर्तव्य हैं वो आपके देश प्रेम की भावना को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। या आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसमें जो भाषा है वो स्थानीय भाषा यानी आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, आपको इसे मानक हिंदी में लिखना है, यानी जो हिंदी का प्रतिष्ठित रूप है, शुद्ध रूप है, उसमें लिखना है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसे अगर आप मानक हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक को ग्राहक लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहां से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है, ठीक है। अब देखिए 11, प्रश्न संख्या 11 आपको देखना है, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो आप लिखेंगे एक भाषा में जब दूसरी भाषा के शब्द आ जाते हैं तो भाषा की जो अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है ना, भाषा का भंडार बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं भाषा अधिक आकर्षक लगने लगती है, भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है, ठीक है, एक लय बन जाती है, एक आकर्षक रूप आ जाता है भाषा का। अब आप देखेंगे भाषा अध्ययन, यानी कि इसमें आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न करने होंगे, ठीक है। तो प्रश्न 12 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो निपात क्या होते हैं, पहले ये बता दूं मैं आपको, जो कुछ, को, तो, अब, भी, ऐसे शब्द जो होते हैं ना, इनको हम निपात कहते हैं, जो किसी शब्द में कहीं पे जोर डाल रहे होते हैं ना, जिस शब्द पे जोर आ रहा होता है वो होते हैं। तो पहले शब्द पढ़ लेते हैं, वाक्य पढ़ लेते हैं, फिर इसमें से हम निपात छांट के नए वाक्य बनाएंगे। क, नगर पालिका भी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। तो इसमें कुछ ना कुछ ये जो है निपात है, तो इसमें आप लिखेंगे मेरा दोस्त मोहन हमेशा कुछ ना कुछ खेलता ही रहता है, ठीक है, या मेरा दोस्त मोहन हमेशा कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। ऐसे ही अगला वाक्य है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो इसमें को ही ये जो है ये है निपात, तो आप लिखेंगे हमेशा सीमा को ही अच्छे अंक क्यों मिलते हैं, हमेशा सीमा को ही अच्छे अंक क्यों मिलते हैं, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। तो इसमें तो था ये हो जाएगा निपात, तो आप लिखेंगे वहां रास्ता तो था पर रास्ते पर जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। वहां रास्ता तो था लेकिन रास्ते पर जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। अगला वाक्य, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। ये अब भी ये हो जाएगा निपात, और इसके लिए आप वाक्य जो बनाएंगे वो आप बना सकते हैं कि तुम अब भी हमेशा देर से क्यों आते हो, तुम अब भी हमेशा देर से क्यों आते हो, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो काम के सिलसिले में, ये जो में है ये हो जाएगा निपात, और इसमें आप लिखेंगे इस समय में तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, या फिर परीक्षा के समय में तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। आप ऐसे लिख देंगे कि परीक्षा के समय में तुम्हें खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 66 पर आ जाइए। यहाँ देखिए प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपको कर्मवाच्य में बदलना है, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। जैसे पहला वाक्य है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है। तो आप क्या लिखेंगे, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है, पान वाला नया पान खा रहा था। तो कर्मवाच्य में आप बदलेंगे पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। ग देखिए, पान वाले ने साफ बता दिया था, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। अगला वाक्य, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। इसके उत्तर में लिखेंगे ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। डा, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। और अगला, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। जब हमें कर्मवाच्य में बदलना होता है ना तो से का उपयोग करते हैं, जैसे राम ने बॉल फेंकी, तो आप लिखेंगे राम द्वारा बॉल फेंकी गई, या राम से बॉल फेंकी गई, ठीक है, ऐसे बदला जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। जैसे अब चलते हैं, अब चला जाए, माँ बैठ नहीं सकती, तो इसको आप भाववाच्य में कैसे लिखेंगे, माँ से बैठा नहीं जाता है, मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता, चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए, माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका भाषा अध्ययन भी पूरा हुआ। अब आते हैं पाठेतर सक्रियता पर। यहाँ पे आपको कुछ 5 बिंदु दिए गए हैं। देखिए पहला, लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया, मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, या तो कलाकार बहुत खुश हो गया होगा कि सरकारी काम के लिए उसे पैसे मिलेंगे, उसका नाम भी हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति के नीचे नाम लिख दिया जाएगा, है ना, या फिर कहीं ना कहीं उसे पे इस जिम्मेदारी का बोझ महसूस हुआ होगा और इसीलिए जल्दबाजी में उसने ऐसी मूर्ति बनाई कि जिसका वो चश्मा बनाना ही भूल गया, ठीक है। अगला, हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार और दूसरे कलाकारों के काम को कैसे महत्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं, लिखिए। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कि हमारे इलाके में जो भी कलाकार हैं, हमें उनके कार्य को समय समय पर सम्मानित करते रहना चाहिए, है ना, लोगों के सामने उनके कार्य का प्रदर्शन करता रहना चाहिए। इस तरीके से हम उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला देखिए, आपके विद्यालय में शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी हैं, उनके लिए विद्यालय परिसर और कक्षा कक्ष में किस तरह के प्रावधान किए जाएं, प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र द्वारा सुझाव दीजिए। तो इसमें आपको एक पत्र लेखन करना है, है ना, पत्र लिखना है कि हमारे विद्यालय में कुछ विद्यार्थी शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, है ना, कि उनके लिए आप बैसाखी का इंतजाम करवा दें, है ना, विद्यालय की जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ा पास लगवाएं, बैठने के सही इंतजाम हो, उनके चलने के, बोलने के, हर चीज के, उनकी पढ़ाई को लेकर ध्यान रखा जाए। इस तरह से आप सुझाव लिख सकते हैं। अगला देखिए, कैप्टन फेरी लगाता था, फेरी वाले हमारे दिन प्रतिदिन की बहुत सी जरूरतों को आसान बना देते हैं, फेरी वालों के योगदान व समस्याओं पर एक संपादकीय लेख तैयार कीजिए। तो इनका योगदान तो ये होगा कि किसी भी चीज की हमें आवश्यकता होती है तो हमारे गली में, मोहल्ले में आ जाते हैं और हम घर बैठे बैठे ही खरीद लेते हैं, है ना, लेकिन समस्या कितना भी मौसम खराब हो, धूप हो, है ना, उन्हें गली गली घूमना पड़ता है, इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उस हिसाब से उनको शायद पैसे नहीं मिल पाते हैं। इस बारे में आपको एक अनुच्छेद तैयार करके लिखना है। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो इसमें चाहे तो आप एक फाइल बना सकते हैं, पहले पेज में नेताजी का चित्र चिपकाइए और फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखिए कि उनका जीवन कैसा रहा, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त की, कहाँ कहाँ गए वो, उन्होंने अपने देश के लिए क्या काम की, सारी बातें आपको लिखनी है। और चाहे तो आप एक चार्ट पेपर पे भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको करना होगा। अगला देखिए, अपने घर के आसपास देखिए और पता लगाइए कि नगर पालिका ने क्या क्या काम करवाए हैं, हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है। तो आपको देखना होगा कि नगर पालिका ने क्या आपके मोहल्ले में रोड बनवाई है, सड़क बनवाई है, पानी का सही इंतजाम करवाया है, साफ सफाई का, कूड़ा कचरा उठाने का सही इंतजाम है या नहीं, सफाई होती है प्रतिदिन या नहीं, ये सारी चीजों आपको आसपास देखनी होगी और उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। जैसे अगर सड़क बनवाई है तो हम उसका ख्याल रखें, हम उसका ध्यान रखें, बिजली पानी का सही से उपयोग करें और सफाई, क्या अगर वो कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग आते हैं तो हमें उनको सम्मान देना चाहिए और व्यर्थ में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, केवल जो कूड़ादान होता है उसमें ही कूड़ा डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए आप लोग, पेज नंबर 67 पे, नीचे दिए गए निबंध का अंश पढ़िए और समझिए कि गद्य की विविध विधाओं में से एक ही भाव को अलग अलग प्रकार से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको एक निबंध दिया गया है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, उसमें पढ़ को आपको ये समझना है कि गद्य की विविध विधाओं में से एक ही भाव को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देश प्रेम, ये रामचंद्र जी ने एक निबंध लिखा है और हमने जो देश प्रेम की भावना के बारे में अभी पढ़ा वो थी कहानी, ठीक है, तो कहानी और निबंध में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये निबंध मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, सिर्फ पढ़ने के लिए है। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि, यह प्रेम किस प्रकार का है? यह सहचर्यगत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिनके बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है, यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, वन, पर्वत, नदी, निर्जर आदि सबसे प्रेम होगा। वह सबको चाह भरी दृष्टि से देखेगा, वह सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहाएगा, जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आंख भर नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभ बूढ़ मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं जागते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि बस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता बताकर देश प्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना रूप परिचय का ये प्रेम कैसा, जिनके दुख सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, ये कैसे समझे? उनसे कोसों दूर बैठे बैठे पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ ना घसीटो। प्रेम हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग या भाव पर अवलंबित है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ हमें पता चला कि कैसे इन्होंने देश प्रेम की भावना के बारे में अपने पूरे विचार अच्छी तरीके से प्रकट किए है ना। लेकिन कहानी में उन्होंने पात्रों के द्वारा इस भावना को दिखाया गया है स्वयं प्रकाश जी ने, कि कैसे देश प्रेम होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये जो पार्ट है वो पूरा होता है। मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।